Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. स्नानयात्रादिकी प्रभुर्हरिलपडसु ईश्वरे नमसरे पायलपडदु स्नानयात्रादिकी प्रभुर्हरिलपडसु ईश्वरे नमसरे पायलपडदु स्नानयात्रा देखि प्रभु रैलपडसु ईश्वरे नमसरे पायलपडदु
असह्य हो उठती है। श्री चैतन्य महाप्रभु को मन
मंदिर में से जगन्नाथ जी की अनुपस्थिति अत्यंत खलने वाली लगी। ओम अज्ञानत मेरा दश ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्नान यात्रा देखी प्रभु हरे बड़ा सुख ईश्वर अनवसरे पाइल बड़ा दुख। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु जब उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ विश्राम करने चले गए तो भगवान चैतन्य अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि वे उनका दर्शन नहीं पा सके। हरे कृष्णा। तो कल आप सबने सुना है भगवान जगन्नाथ के स्नान यात्रा के बारे में, तो आज फिर से हम उसके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज तीन बड़े बड़े उत्सव हैं। कौन कौन से उत्सव हैं? श्वेत पटल पर लिखा हुआ है, एक है स्नान यात्रा, दूसरा है श्री मुकुंद दत्त का तिरुभाव, और तीसरा है श्रीधर पंडित का भी तिरुभाव। तो इस संसार में हम देखते हैं व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से अपने गन्ने का जूस पिया होगा तो जो जूस बनाने वाला होता है तब तो गन्ने को मशीन के अंदर डालता है जब तक पूरी तरह से क्या ना हो जाए, जूस ना निकल आ जाए पूरा, एक बूंद भी नहीं रखना चाहता उसके अंदर। मतलब पूरी तरह से वो प्रयास करता है कि पूरा जो जूस है गन्ने के अंदर का वो बाहर आ जाए। वैसे ही हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मौका ढूंढते हैं, और जहां कुछ ऐसा मौका मिलता है सुख प्राप्ति का थोड़ा सा इंद्रियों के माध्यम से या मन को संतुष्ट करने वाली चीजों से, तो हम उस चीज को पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। और वास्तव में मनुष्य सुख की अनुभूति थोड़ी सी करता है जब उसके जीवन में उत्सव आते हैं। क्या आते हैं? उत्सव। इसलिए हर कोई उत्सवों का इंतजार करता है, ऐसे लगता है दिवाली अभी कब आएगी, है ना। सैया बच्चे सब ऐसे खुश हो जाते हैं। उत्सव में क्या है, अलग अलग पदार्थ खाने के लिए मिलते हैं, खरीदी की जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मनुष्य जीवन से जो उत्सवों को निकालो तो सुख ना के बराबर है। जब उत्सव होते हैं मनुष्य जीवन में तो व्यक्ति सारे झंझट सारा स्ट्रगल ट्रबल सब कुछ अलग छोड़ देता है और अपने प्रियजनों के साथ उत्सव में भाग लेता है आनंदित होकर। तो वैसे ही भक्तों के जीवन में भी उत्सव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ तो प्रतिदिन उत्सव लगे पड़े हैं। हाँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ है, और वैकुंठ का वर्णन ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में करते ब्रह्म संहिता में, वो कहते हैं कथा गानम नाट्यम गमनपि प्रिय वंशी सखी। वो कहते हैं कि वैकुंठ क्या है, वहां बोलना ही गाना है, चलना ही क्या है, नृत्य है, तो ये वैकुंठ है। तो इसलिए भक्तिमय जीवन में उत्साह या उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्सव का परिणाम क्या है कि फेस्टिवल्स हमें भगवान के नजदीक ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? नजदीक ले जाते हैं, क्लोज। हाँ, लेकर नजदीक ले जाते हैं। तो इसलिए अभी रिसेंटली एक उत्सव हुआ था चिड़ा दही फेस्टिवल, रघुनाथ दास गोस्वामी ने मनाया, तो वो फेस्टिवल को मनाने मात्र से वो किसके चरणों में पहुंच गए, चैतन्य महाप्रभु के। तो यदि हम उत्सव में भाग ले रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन भगवान की ओर, भगवान के नजदीक हम नहीं पहुंच रहे हैं, तो वास्तव में हम उत्सवों में भाग नहीं ले रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इन उत्सवों का आना और उनमें भाग लेना। उत्सव आते तो हम भागते हैं उत्सवों से दूर। उत्सवों का एक और परिणाम बहुत अद्भुत है कि महान भक्तों का हमें संग लाभ मिलता है उत्सवों में, हाँ, जिसके द्वारा हम भगवान के सेवा के प्रति हमारे जीवन में उत्साह प्राप्त करते हैं, एंथुसियाज्म, हाँ, इसलिए बहुत आवश्यक है। वैसे स्नान यात्रा है, अभी स्नान यात्रा कल ही चर्चा हुई थी, इसलिए मोहन रूपा प्रभु ने अद्भुत लीला का वर्णन किया था जगन्नाथ जी के। तो स्नान यात्रा ये जगन्नाथ जी की ट्रिक है। भगवान को कहते हैं बाके बिहारी, क्या कहते हैं बाके बिहारी, हाँ, भगवान गीता में कहते हैं छलने छल करने वालों में मैं सबसे बड़ा छलिया हूं। हाँ, कोई कह सकता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं दूसरों को धोखा देने के लिए, लेकिन भगवान से अधिक धोखा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो ये स्नान यात्रा क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, कि ये भक्तों को बड़ा आनंद देता है, और सबसे अधिक आनंद स्नान यात्रा के दिन हुआ था, किसको हुआ था, चैतन्य महाप्रभु को। अब याद करेंगे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने सर्वप्रथम स्नान यात्रा फेस्टिवल अटेंड किया था, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए, बहाना बनाकर साउथ इंडिया में टूर उन्होंने किया, और जैसे दक्षिण भारत से वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला उत्सव कोई मनाया या देखा तो वो कौन सा था, स्नान यात्रा में। तो ऐसे जगन्नाथ जी के 22 उत्सव हैं, कितनी यात्राएं हैं, 22, बाकी फेस्टिवल्स अलग हैं, उनका लिस्ट बताना तो बड़ा कठिन है। तो लेकिन ऐसी 22 यात्राएं हैं जिसकी शुरुआत होती है चंदन यात्रा से, अभी गया ना चंदन यात्रा, फिर ये कौन सी यात्रा है, स्नान यात्रा, फिर क्या आएगी, रथ यात्रा, फिर ऐसे बहुत सारे उत्सव, लगभग 22 यात्राएं भगवान जगन्नाथ के लिए मनाई जाती हैं। तो ये स्नान यात्रा क्या है, रत्न वेदी से स्नान वेदी तक जो भगवान का ट्रैवलिंग है, मतलब भगवान बैठते हैं जिस स्थान में, जगन्नाथ जी अपने मंदिर में जो उनका सिंहासन है उसको रत्न वेदी कहते हैं, वहां से भगवान बाहर निकलते हैं और जो दीवार होता है मंदिर का उसके पास बड़ा ऊंचाई का एक स्थान बनाते हैं मंच, जिसके ऊपर जाकर जगन्नाथ को रखते हैं और ऊंचे मंच पर भगवान को स्नान कराया जाता है, इसलिए स्नान यात्रा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे स्नान यात्रा में भाग लेकर मेरा जो हृदय है वो बहुत आनंदित होता है। क्यों चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं, कृष्णदास कविराज कहते हैं क्यों, क्योंकि ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये राधा रानी के भाव में है, कौन से भाव में है, राधा रानी के भाव में है, मतलब कि दो जो कृष्ण है वो जगन्नाथपुरी में रो रहे हैं, कृष्णा क्राइंग फॉर राधा रानी, उनको क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी, जब कृष्ण राधा रानी के लिए रो पड़ते हैं उनको जगन्नाथ कहा जाता है, और वही कृष्णा जब कृष्ण के लिए रोते हैं वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। तो ऐसे महाप्रभु को आनंद होता है जब जगन्नाथ जी अपना मंदिर का गर्भगृह छोड़कर बाहर आते हैं, क्योंकि राधा रानी का जो प्राण है, हाँ, वो कौन है, कृष्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सदैव भगवान जगन्नाथ को प्राणनाथ कहकर पुकारते हैं, अश्लेषवा पादरतः विनुष्टमा, क्या है वो श्लोक,
हाँ, तो शिक्षा स्कंध में वो कहते हैं, चाहे आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें या मुझे लात मारकर दूर भगा दे, लेकिन आप ही केवल मेरे क्या रहेंगे, कृष्णा प्राणनाथ रहेंगे। इसको कहते हैं प्रेम की सर्वोच्च जो पराकाष्ठा है, मतलब जो प्रेम है वो इन भौतिक बाधाओं से टूट नहीं सकता। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को अपना प्राणनाथ समझते हैं। प्राणनाथ का मतलब क्या है, सरल डेफिनेशन, मछली पानी से बाहर निकलकर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकती। मछली का जीवन कौन है, पानी है। उसी प्रकार से जिसके हृदय में कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्रेम है, उसके लिए जो कृष्ण है, जगन्नाथ है, वो उसके लिए प्राणनाथ है या प्राण है, लाइफ है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आनंदित होते थे और महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर स्नान यात्रा देखने के लिए जाते थे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये स्नान यात्रा है भगवान जगन्नाथ का, जैसे कल भी वर्णन किया था, जगन्नाथ का क्या है, जन्म दिवस है, ज्येष्ठ पूर्णिमा। कोई आपको पूछे कि जगन्नाथ का बर्थ प्लेस कौन सा है, अभी कृष्ण का जन्म स्थान कौन सा है, हाँ गोकुल, मथुरा भी कहते हैं। हाँ, उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ का बर्थ प्लेस है, जिसको टेक्निकली टेक्निकल भाषा में कहते हैं महावेदी, गुंडीचा मंदिर। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, गुंडीचा मंदिर में। वो मंदिर तो बाद में बना, इंद्रदिम्न सर्वप्रथम जब श्री क्षेत्र में पहुंचे जगन्नाथपुरी में, तो उस स्थान पर बहुत बड़ा वेदी बनाया गया था। उस स्थान पर जब यज्ञ किया नारद की आज्ञा से, तो सर्वप्रथम यज्ञ से उग्र नरसिंह प्रकट हो गए, जिनको यज्ञ नरसिंह कहते हैं, और आज भी उनकी स्थापना वहां है जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर के पास। और फिर वहां ही भगवान जगन्नाथ के दारू के द्वारा, वो जो ऊड है लक्कड़ का जो तना था, उसके द्वारा भगवान प्रकट हो जाते विग्रह के रूप में उस स्थान में। और फिर उनको वहां जगन्नाथ टेम्पल लिया जाता है। और वो फर्स्ट दिन था आज का दिन, जिस दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का क्या किया था, स्नान संपन्न किया था। चार नहीं, पांच विग्रह होते हैं स्नान यात्रा में। कितने विग्रह होते हैं, पांच। एक है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, और तीसरे हैं मदन मोहन, कृष्णा। इतने छोटे से कृष्णा है मदन मोहन, त्रिभंग ललित। जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो बड़ा एक छोटा सा टेम्पल है जिसको कहते हैं जगन्नाथ परिवार। सारे विग्रह है वहां, कृष्ण, बलराम, समुद्र नारायण, और पूरी गढ़ गोपाल, ऐसे बहुत सारे विग्रह है, उसमें मदन मोहन होते हैं। तो ऐसे पांच विग्रह का स्नान कराया जाता है स्नान पूर्णिमा के दिन, और इसका दूसरा नाम है देव स्नान पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, तो ये सारा वर्णन व्यास देव ने स्कंद पुराण पद्म पुराण में किया है, और एक विशेष ग्रंथ है नीलाद्रि महोदय, और एक बुक है ग्रंथ पुराना जिसका नाम है जगन्नाथ प्रिय नाटकम। हाँ, इन ग्रंथों में ये जगन्नाथ की जो महिमा है सर्वाधिक रूप में हमें प्राप्त होती है। तो जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से स्नान होता है, हाँ उसका मैं वर्णन करता हूँ थोड़ी देर, फिर हम बाद में आचार्य में चर्चा करेंगे। तो आज के दिन भगवान जगन्नाथ, हाँ बल्कि वो बाहर आने के लिए कब से प्रयत्न करते हैं, जगन्नाथ जी को मंदिर के अंदर निवास करना अच्छा लगता नहीं है। ये जगन्नाथ टेम्पल तो द्वारका है, राजमहल है, और ये कहाँ का बालक है कृष्ण, कहाँ का बालक है, गांव का, वृंदावन का, जिनको यमुना, मयूर, गोवर्धन, गव्वे, गोपिका, सखा, इनके बीच में आनंद लीला करना, खेलना, कूदना अच्छा लगता है, उनको कहाँ जाकर बिठा दिया है, महल में राजपाट संभालने के लिए। भगवान का हृदय वहां लगता नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि कहाँ मुझे बांध के रख दिया, कब मैं बाहर निकलूंगा यहाँ से। तो इसलिए वो सदैव ऐसी बड़ी आंखें करके दरवाजे पर देखते हैं, कब मौका मिलेगा मुझे यहाँ से भागने का, है ना। तो ये भी कहा देख रहे हैं, राधा कृष्ण गेट की ओर ही देख रहे हैं कि बाहर निकलना है। तो ऐसे जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें जो भाग जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की कुछ चलती नहीं है। घर में जो हस्बैंड होता है उसकी चलती है क्या? नहीं। स्वामिनी घर की एक रक्षा करने वाली कौन होती है? स्वामिनी, जिसकी चलती है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर का एक नाम है जिसको कहते हैं श्री मंदिर। कौन सा मंदिर? श्री मीन्स श्रीमती, और कौन सी श्रीमती? लक्ष्मी देवी। तो वहां जगन्नाथ मंदिर के जो कंट्रोलर हैं वो लक्ष्मी देवी हैं, और उनके अंडर हैं जगन्नाथ जी। सब डर के रहते हैं जगन्नाथ जी वहां, उनके परमिशन के बिना वो जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकल नहीं सकते। तो ऐसे जगन्नाथ जी जब वहां होते हैं तो वो बहाना बनाते हैं कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तीन ट्रिक्स हैं जगन्नाथ के जो छल धोखा देकर निकल पड़ते बाहर। पहला तो कहते बहुत गर्मी लग गई, फिर ठीक है लक्ष्मी, क्योंकि सारी सेवाएं किसके अंडर आती है? लक्ष्मी के अंदर। जैसे हम मंदिर में सेवा करते हैं, इसके इंचार्ज कौन है? बलराम जी। कौन है? बलराम जी, या फिर श्रीमती राधा रानी। कृष्ण की एकमेव सेवा का अधिकार श्रीमती राधा रानी के पास है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सरल है। आपको भगवान को पुष्प अर्पित करना है तो आप पुष्प लेके आओ और श्रीमती राधा रानी के हाथ में दे दो। कृष्ण की क्या, कृष्ण मना नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है राधा रानी। इसलिए भगवान झुके रहते हैं। किसकी ओर ऐसे झुके रहते हैं? देखो किसकी ओर झुके गर्दन उनकी? राधा रानी के ऊपर। क्योंकि प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं मायापुर में जो राधा माधव है वो राधा रानी विशेष है, क्योंकि राधा रानी ऐसी हाथ करके हैं और वो भगवान को पुष्प अर्पित कर रही है, और जिसके द्वारा कृष्ण वश में हो गए, इसलिए कृष्ण ऐसे झुके हुए हैं कि राधिका तुम जैसी कहोगे हाँ वैसे ही करने के लिए तैयार हो। तो उसी प्रकार से जो सारे सेवाओं का जो अधिष्ठान जगन्नाथ मंदिर में किसके पास है कंट्रोल, तो वह लक्ष्मी देवी के पास है। सारे सेवक उनके इशारे से दौड़ते हैं भगवत सेवा करने के लिए। तो यहाँ पहली ट्रिक यूज करते जगन्नाथ, वो कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ताप सहने हो रहा है। ऐसे बोला ना माधवेंद्र पुरी को, गोपाल कहे पुरी हमार, गोपाल कहते कि हे पुरी, माधवेंद्र पुरी, ये जो ताप है वो जा नहीं रहा है। मलय चंदना दबे से जुड़ा है, मलय देश में जाओ चंदन लेके आओ, उसका लेप लगाओ, तब मैं ठंडक महसूस करूंगा। तो पहले जगन्नाथ जी ने कहा मुझे गर्मी हो रही है, तो लक्ष्मी देवी सेवकों के साथ सारा चंदन लगा दी है, चंदन लेप होता है। एक जो वेश है भगवान का उसमें से एक है चंदन लागी वेश। तो ऐसे पहले चंदन लगाते हैं, फिर देखा कि चंदन लगा है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं जा रही है। वो सोचते मैं वृंदावन में होता हूं तो वहां कोई चंदन आने की आवश्यकता नहीं है, गर्मी हो जाए तो यमुना में कूदता हूं, यहाँ कहा जाओ कूदने, यहाँ तो समंदर है और मुझे बांध के रखा है मंदिर में। तो कहते हैं बहुत गर्मी हो रही है, चंदन से भी रहा नहीं जा रहा है, उमस बढ़ रही है, तो कहते कुछ और करो। तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाती है। कौन सी व्यवस्था? स्नान यात्रा की। थोड़ा सा बाहर ले लो, चोर होता है ना कि थोड़ा सा हाथ छोड़ दो, बस वो ढूंढता है मौका, हाथ छोड़े तो भागने के लिए तैयार। तो अभी पहले तो बहाना बनाया चंदन, ठीक है चंदन लगाया, फिर कहते नहीं नहीं अभी अंदर चंदन से भी रहने जा रहा है, शाम तक चंदन तो सूख जाता है, उमस हो गई, थोड़ा सा बाहर ले जाओ, पानी डालो मेरे ऊपर। तो फिर उनको बाहर लिया जाता है स्नान करने के लिए, स्नान यात्रा जिसे कहते हैं। तो भगवान आज के दिन जगन्नाथपुरी में सुबह सुबह उनका मंगल आरती होता है, और दो प्रकार के सेवक होते हैं उनके, जिनको कहते सुराज और महासुरा। सुराज और महासुर ऐसे दो प्रकार के भगवान के पंडाल से सेवक हैं। वो आरती के बाद क्या करते हैं? 130 घड़े गोल्डन पॉट्स, हम माटी मिट्टी के लेके आते हैं, वहां कौन से इस्तेमाल होते हैं? सोने के घड़े लिए जाते हैं और उत्तर द्वार में चार जो द्वार है जगन्नाथ मंदिर में, सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, गज द्वार, हस्ती द्वार, तो उसमें जो उत्तर द्वार है उस द्वार में एक कुआं है जिसको कहते हैं सोना कुआं। आप बाकी दिनों में जाओगे तो वो बंद ही मिलेगा आपको, ढका रहता है, जमीन के लेवल में है, लेकिन आज जाओगे तो आपको खुला दिखाई देगा। तो सुबह सुबह ये सेवकगण जाते हैं जिनके मुंह में कपड़ा बांधा होता है यहाँ से नोज नाक से लेके मुंह में, ताकि जल में जल जो लेते हैं वो उससे उनका सांस भी टच ना करे, या उसे जब हम बोलते हैं थूक के छोटे छोटे कण बाहर आते हैं वो भी ना जाए, इतना ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब इसी को कहते हैं कॉन्शियस। कृष्ण की हर सेवा में क्या होना चाहिए, हमें कॉन्शियस सावधान होना चाहिए। तो वैसे ही वो जल ले लिया जाता है सारे घड़े और उनको लाकर वो सारे लाते अपने सर में रखकर जो मंदिर का एक स्थान है भोग मंडप जिसमें भगवान जगन्नाथ को भोग लगाते हैं उसमें वो मटके रखे जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो सेवक है उनके जिनको कहा जाता है पाला पंडा, एक प्रकार के सेवक, वो क्या करते हैं उसको शुद्ध करते हैं उस जल को, जिसमें हल्दी डालते हैं, चंदन डालते हैं, पूरा जो राइस है वो डाला जाता है, फूल अगोरी अगरू सुगंधित द्रव्य आदि डालते हैं, और फिर से उसको अपने सर में उठाकर एक लाइन में चलते हैं सारे सेवक, और आगे मृदंग करताल नगाड़े ड्रम्स बजते हुए ये सारा कहाँ आता है सामान, स्नान वेदी के पास जहाँ अभिषेक होने वाला है। और भगवान जगन्नाथ को सुभद्रा बलदेव आदि को इनको भी उठा के जिसको पहंडी कहते हैं उठा उठा कर लाते हैं और उस मंच पर रखा जाता है, ऊंचा है वो मंच बहुत ऊंचा है। फिर आप मंदिर के बाहर रोड पर खड़े हो, जहां तहां खड़े हो आपको जगन्नाथ जी दिखाई देंगे, स्नान वेदी पर वो बैठे हुए हैं। तो फिर ये सारे पंडागण उस जल के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, हजारों हजारों घड़े, इन सारे घड़ों के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है विशेष रूप से चंदन मिश्रित जल से। और फिर भगवान आज के दिन इतना इतना अधिक स्नान करते हैं, मनोसुक्त इतना अधिक स्नान करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि उनको ठंड लग जाती है, और जब ठंड लगती है तो वो कहते हैं कि अरे मुझे कहाँ ले चलो, एकांत स्थान में जहां मैं ओढ़कर बीमार हो गया दवाई खाऊंगा परहेज करूंगा बस। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्नान करने के बाद उनको इतना ठंड लगता है कि वो वहां से 15 दिन के लिए क्या होते हैं फिर बेड पर जाकर लेटते हैं। जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो उनके बेड भी है, बड़े बड़े बेड, ऐसे बड़े बड़े बेड आपको नजर आते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ अंदर जाते हैं 15 दिन के लिए बंद होते हैं, बल्कि उनका बाहर निकलने का दूसरा ट्रिक बड़ा अमेजिंग है। ये जिनको कहते हैं भगवान, पहला ट्रिक तो चंदन और दूसरा है स्नान मंडप। अभी देखो हद है इनकी, तो पहला बहाना बनाया कि मेरा ताप कम नहीं हो रहा है। एक कौन सा, दो प्रकार के ताप होते हैं, एक है शरीर का ताप और एक है प्रेम का ताप। शरीर का ताप किससे दूर हो जाता है, दवाइयों से, और जब प्रेम का ताप हो जाता है तो वो प्रेमी व्यक्ति सामने होना चाहिए तभी वो ताप क्या होता है, कम हो जाता है। अभी भगवान जगन्नाथ के प्रेमी कौन है, ब्रजवासी गण है, और ब्रजवासी गण इनको देखने के लिए लालायित है भगवान जो जगन्नाथ है। इसलिए जब वो स्नान मंडप पर आते जो बहुत ऊंचा है वहां आकर उनको भूल जाते कि मुझे स्नान करना है, बल्कि अपनी आंखें ऐसे ऊपर करते हैं और पांव ऐसे उठाते हैं। सोचो आप किसी को आपको देखना है और वो व्यक्ति बहुत दूर है और थोड़ा कठिन है, आप छोटे हो नाटे हो तो आप क्या करते हो, अपने पांव पीछे से ऊपर करके ऐसे देखते हो, हाँ पूरा प्रयास करते हो देखने को उस व्यक्ति को। तो वैसे ही जगन्नाथ स्नान वेदी पर खड़े रहकर, उनको अभी कोई सुध बुध नहीं है, उतने ऊंचाई से दूर देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं बताइए? गुंडीचा मंदिर, उसको कहते हैं सुंदराचल वृंदावन। उनका ड्रामा है स्नान करना, उनका अंतरंग कारण क्या है? आचार्य कहते हैं वहां से वो तो ब्रजवासियों को देख रहे हैं, ब्रजवासियों को देखना चाहते हैं वहां। क्यों? क्योंकि उनको देखने मात्र से उनका ये जो ताप है वो शांत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक 8-9-10 बजे तक वहीं खड़े रहते हैं और पूरा वो दूर देखते रहते हैं। और वृंदावन के विचार में, वृंदावन के वियोग में वो क्या रहते हैं? डूबे रहते हैं। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का ये दूसरा ट्रिक था जिसके द्वारा वो केवल देखना चाह रहे थे किसको? ब्रजवासियों को, क्योंकि ये नेचुरल है भगवान कृष्ण के लिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, प्रेमे कृष्ण वश है प्रेमे तार भजी। ये स्लोगन है। कृष्ण कैसे वश में हो सकते हैं? प्रेम से। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है उसी के ही कृष्ण है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, कि भगवान कृष्ण का स्वाभाविक प्रेम वृंदावन वासियों के लिए है और वृंदावन वासियों का स्वाभाविक प्रेम किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। यह वैसे ही है जैसे कोई माँ का अफेक्शन अपने बच्चे के लिए बहुत अधिक गहरा होता है। कुछ भी हो, कहां भी बच्चा हो, तो उसको ढूंढ के निकाल ही लेगी। या शास्त्र ने उदाहरण दिया है कि हजारों हजारों गायें हैं और उसका एक बछड़ा कहां हुआ, उसको छोड़ दो हजारों गायों में, वो किसी और दूसरे गाय के पास नहीं जाएगा, वो अपनी ही माता जो गाय है हजारों गायों में उसी के पास जाएगा। इसको कहते हैं स्वाभाविक आसक्ति और इसी को कृष्ण से इसकी तुलना की गई है। कृष्ण का स्वाभाविक प्रेम ब्रजवासियों के प्रति है और ब्रजवासियों का स्वाभाविक सर्वाधिक प्रेम कृष्ण के प्रति है। इसलिए तभी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है जब व्यक्ति ब्रजवासी हो। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? कृष्ण प्रेमी या ब्रजवासी? हाँ, ब्रजवासी बनना। तो कोई कहे ब्रजवासी कैसे बना जा सकता है? शास्त्र कहते तीन प्रकार के ब्रजवासी हैं। पहला ब्रजवासी कौन है? जिसने ब्रज में जन्म लिया है वो ब्रजवासी है। दूसरा है जिसने दूर कहां जन्म लिया है लेकिन वहां आकर वो छोड़कर ब्रज में आकर वास करता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रजवासी। और तीसरा ब्रजवासी है कि जिसने जहां तहां जन्म लिया है, अपने अपने स्थानों में रहा है, लेकिन उसका जो मूड और भगवान की सेवा करने का जो एटीट्यूड है वो किसके समान है? ब्रजवासियों के समान है। तो वो भी ब्रजवासी है, सर्वश्रेष्ठ ब्रजवासी है। इस प्रकार से जब तक व्यक्ति ब्रजवासी की भावना में नहीं होगा तब तक कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। चैतन्य चरितामृत कहता है कृष्ण तो केवल ब्रज प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, अन्यों के द्वारा उनको प्राप्त करना असंभव है। बाकी जो भगवत भावना है उससे आप वैकुंठ जा सकते हो लेकिन वृंदावन गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते जब तक ब्रजवासियों के लेवल का, उनके स्वभाव का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति यदि व्यक्ति के हृदय में नहीं है तब तक ये संभव नहीं है। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो छलिया है योजना बनाते, पहले चंदन यात्रा, फिर स्नान यात्रा, फिर अभी कौन सी यात्रा रह गई? थर्ड रथ यात्रा। चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और रथ यात्रा में वो विजय प्राप्त करते, उनका जो गोल था बाहर निकलने का वो पूरा हो जाता है। और बल्कि उससे पहले, इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण टेढ़े हैं और उनको समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए भागवतम के शुरुआत के ही श्लोकों में वर्णन आया है, निर्मत्सराणां सतां, जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण द्वेष और ईर्ष्या की भावना से रहित है वही व्यक्ति कृष्ण या भागवत को समझने का अधिकारी है। अन्य व्यक्ति के लिए भागवत और कृष्ण समझना क्या है, बहुत ही कठिन है। इसलिए वो शब्द यूज करते व्यासदेव, निर्मल सरानाम सदाम। तो वैसे भगवान है जिनको समझना कठिन है, लेकिन उनका जो प्रेमी भक्त है वो इनके सारे रहस्य को समझ सकता है। तो भगवान भ्रम करते हैं कि मैं तो बीमार हो गया हूं, अभी 15 दिन के लिए बस दवाई खाऊंगा, जूस पीऊंगा, जड़ी बूटी और राजवैद्य के निर्देशन में कार्य करूंगा। तो आप 15 दिन जाते हो जगन्नाथपुरी में, आपको कोई प्रसाद नहीं मिलेगा वहां, वो बस पानी मिलता है राइस का, हाँ टंक तुरानी कहते हैं उसे, वो जगन्नाथ का कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। और रथ यात्रा के दिन जाओगे तो भी कोई जगन्नाथ का प्रसाद नहीं मिलेगा आपको, राइस आदि वो तब तक खाते नहीं जब तक कहाँ नहीं जाते, गुंडीचा। बुखार में व्यक्ति खाता है क्या? नहीं खाता। बुखार जब उतरता है गुंडीचा पहुंचते ही सारा बुखार क्या हो जाता है उनका, उतर जाता है। अलग किचन है वहां, वहां फिर शुरू करते हैं, हाँ पूरे दिन खाते रहते हैं, उनकी उंगलियां गिरी रहती हैं। तो ये अमेजिंग एक्टिविटीज हैं जगन्नाथ की। हाँ इसलिए भगवान सोचते हैं बाहर निकलने के लिए, अभी 2 स्टेज तो पार कर दे, लेकिन सीधा बाहर जाके रथ के ऊपर बैठकर सवारी करके चले जाना, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, करेज चाहिए। और बीच में कौन है? लक्ष्मी देवी। अभी सोचते इसको संतुष्ट करता हूं, होता है ना इस व्यक्ति को अपना बना लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, बच जाऊंगा। तो वैसे लक्ष्मी को कैसे संतुष्ट करेंगे? हाँ तो फिर कृष्णदास कविराज लिखते हैं, पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तार संगे क्रीड़ा कैल निवृते बसिया। जगन्नाथ ने सोचा रे मेरी जो भार्या विवाहिता पत्नी कौन है? लक्ष्मी। कितनी लक्ष्मिया है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, ब्रह्म संहिता कहते हैं। कृष्ण की पत्नियां कितनी है? हजारों हजारों, द्वारका की जो रानियां हैं। तो सोचते कि अरे ये लक्ष्मी इतना कुछ कर रही है, अपनी पत्नी को मैं कभी टाइम ही नहीं देता। आजकल होती है ना लड़ाई ग्रस्त जीवन में, पत्नी कहती मुझे टाइम नहीं देते, बच्चे देते हमें नहीं देते, और इसके पास टाइम ही नहीं है, मृत्यु के नजदीक बेचारा खड़ा है, किसको किसको टाइम देगा। तो यहाँ भगवान सोचते कि लक्ष्मी को टाइम ही नहीं दिया, क्यों आप जगन्नाथपुरी जाके देखते हो तो पता चलेगा। ये दो हमेशा अलग अलग मंदिरों में है, जगन्नाथ जी एक मंदिर में है और लक्ष्मी देवी क्या है, अलग से मंदिर में है। हाँ क्योंकि वो राजा है और ये रानी है, इसलिए कहते हैं वैदिक सभ्यता में जो राजा और रानी ओपनली नहीं मिल सकते सबके सामने। जैसे दक्षिण भारत जाओगे तो सारे मंदिरों में आपको लक्ष्मी का मंदिर अलग मिलेगा और भगवान विष्णु का अलग मिलेगा हमेशा। तो फिर भगवान सोचते हैं कि बहुत समय बीता, इसको टाइम दे दिया, अभी फुल कितने दिन होगा? 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। तो कृष्णदास कविराज कहते पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया, 15 दिन के लिए भगवान ने महालक्ष्मी को साथ ले लिया। तार संगे क्रीड़ा कैले निवृत्ति बसिया, उनके साथ 15 दिन तक क्रीड़ाएं की, 15 दिन के लक्ष्मी को लेकर बैठ गए। तो आप जाओगे आज से, आज शाम तक तो जगन्नाथ के दर्शन है, कल से जाओगे तो जगन्नाथ के दर्शन नहीं होंगे आपको। जहाँ जगन्नाथ मंदिर में आप जा सकते हैं, अंदर गर्भगृह लोग रहते हैं अल्टर, तो वहां एक पट्ट चित्र लगाते हैं, हाँ छोटा सा, जिसमें 3 फोटोज होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, उनको 15 दिन दे देते हैं लक्ष्मी को। हाँ क्योंकि कृष्ण का एक स्वभाव है, वो किसी के नहीं है। क्या है? किसी के नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के हैं। वो किसके हैं? हाँ वृंदावन वासियों के हैं। इसलिए वृंदावन वासियों के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कृष्ण को अपने वश में करने का। हाँ इसलिए स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, गोपीगण बिना कृष्ण हरिते नारे मान। महाप्रभु ने जब पूछा अरे ये जो जगन्नाथ है ये छल करके अपना मंदिर छोड़कर ये नीलाचल से सुंदराचल जा रहे हैं, ये तो धोखा ही दे रहे हैं वहां लक्ष्मी को, क्यों ऐसा? तो स्वरूप दामोदर इस उत्तर में लिखते हैं, वहां बोलते महाप्रभु चैतन्य को, वो कहते हैं कि जो कृष्ण है हाँ वो क्या है, उनको ये लक्ष्मी आदि आकर्षित नहीं कर सकते अपनी सेवाओं के द्वारा भी, प्रेम के द्वारा भी, केवल कौन उनके मन को आकर्षित कर सकती है? गोपिकाएं। क्यों, क्या ऐसी चीज है? तो शास्त्र कहते हैं प्रेममय वपु कृष्ण भक्त प्रेमाधीन शुद्ध प्रेमे रस गुणे गोपिका प्रवीण। तो यहां भगवान का वर्णन किया है कि उनका प्रेममय शरीर है और भक्तों के प्रेम के अधीन ही कृष्ण है, और ऐसे शुद्ध प्रेम में ये गोपिकाएं अत्यधिक प्रवीण है, एक्सपर्ट है, दक्ष है। गोपिकार प्रेमे नाहि रसा भास दोष अतएव कृष्णेन करे परम संतोष। गोपिकाओं की जो प्रेम की भावना है या सेवा की जो वृत्ति है उसमें कोई मिलावट नहीं है। अभी लक्ष्मी में भी सेवा करती है लेकिन उसके अंदर भाव है, मैं कौन हूं? लक्ष्मी हूं। वो अपने सोना ये सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लक्ष्मी का भाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसमें क्या है कहते हैं, दोष मिलावट है। इसलिए देवता भी भक्त है, ब्रह्मा चंद्र वरुण आदि ये सारे देवता भक्त है, लेकिन वो भगवान को इतने प्रिय नहीं है जितना कोई शुद्ध भक्त प्रिय है। क्यों? क्योंकि देवताओं के अंदर दो चीजें हैं, एक तो वो बहुत बड़ा पद हमेशा चाहते हैं और दूसरा भोग करने के लिए चाहते हैं। भक्ति भी करनी है हमें, भगवान हम आपके सेवक है लेकिन मुझे भोग करने के लिए सुविधाएं भी चाहिए और मेरे पास कंट्रोल करने के लिए पद भी चाहिए, इसलिए भगवान उनसे आकृष्ट नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से लक्ष्मी अपनी सेवा से प्रेम से कृष्ण को या जगन्नाथ को अपने वश में नहीं कर सकती जितना गोपिकाएं करती हैं। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, निकल जाते हैं वहां से बाहर। हाँ, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है कि भगवान जगन्नाथ फिर उसको संतुष्ट करते हैं और फिर 15 दिन जिस दिन रथ यात्रा का एक दिन पहले एक उत्सव होता है जिसको कहते हैं नवयौवन उत्सव। बल्कि जो 15 दिन अभी कल से भगवान जगन्नाथ को नया पेंट किया जाता है, फिर से उनको पेंट किया जाता है, ठीक ठाक किया जाता है, क्योंकि पानी से सब कुछ बह जाता है, तो कोई ऐसे ये जो ऑयल पेंट आदि यूज नहीं होते भगवान जगन्नाथ को, जो नेचुरल रंग है कलर्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर भगवान रथ यात्रा से एक दिन पहले दर्शन देंगे, 6 जुलाई को रथ यात्रा है तो 5 जुलाई को दर्शन देते देंगे भगवान, जिसको कहते हैं नवयौवन उत्सव या नेत्रोन्मिलित उत्सव, जिसमें सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी अपने भक्तों को लेकर हाथ पकड़कर सबसे पहले नेत्रोत्सव में पहुंच जाते थे और वो भी सारे पूरे अल्टर के अंदर जाते थे रत्न वेदी के पास, और सुबह से चैतन्य महाप्रभु शाम के 5 बजे तक एक ही जगह खड़े रहते थे और वहां से जगन्नाथ को देखते रहते थे। तो इस प्रकार से फिर दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ ताहरा सम्मति रहिया भक्त सुख देते रथे चढ़ी भाय रहिया, कहते कि फिर लक्ष्मी की अनुमति लेते हैं। अभी लक्ष्मी खुश हो गए, क्यों खुश हो गए, 15 दिन जो दे दिए उसको, फिर अभी कहते कि आप जा सकते हैं। हाँ, उसको डाउट हमेशा बना रहता है, फिर भी जगन्नाथ कहते हैं मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, किसको साथ ले जा रहा हूं, मेरे भाई है बलराम सुभद्रा है। हाँ, तो उनको साथ लेकर भगवान जगन्नाथ उनको अलग अलग रथों में बिठा देते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से पदार्पण करते हैं या निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का ये दिव्य योजना है जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलने का और किसको मिलने का, ब्रजवासियों को। हाँ, ब्रजवासियों में श्रेष्ठ कौन है,
श्रीमती राधा रानी। तो इस प्रकार से स्नान यात्रा के उपलक्ष्य में चैतन्य चरितामृत में और भी ऐसे जो तत्व हैं भगवान के जो वर्णित किया है कृष्णदास कविराज ने और चैतन्य महाप्रभु ने, ये भक्तों को आस्वादन करने के लिए लिखा है। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, कोई पूछे कि क्या इतना सब आपने लिख दिया है इस ग्रंथ में, वो कहते हैं जो कोकिल के समान भक्त होंगे वो इसका आस्वादन करेंगे, आनंद अनुभव करेंगे। जो कौवे के समान होंगे उनको ये अच्छा नहीं लगेगा भगवत चर्चा। हमारी कथा श्रवण या हमारा भगवान का पुकारना क्या है, हमारी स्थिति पर अनुभव करता है। कभी कभी मैं भी, हम जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करते हैं लेकिन भगवान को नहीं पुकारते, कोई और इच्छाएं होती हैं जिनको पुकारते हैं, जो हमारे मन में चलती रहती हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम भगवान नाम जोर जोर से पुकारते हैं। एक छोटा सा बच्चा था अपने घर में, उसने मिर्च खा ली, क्या खा गया, फुट की हरी लंबी चौड़ी मिर्च ऐसे मुंह में डाली, खाई, चिल्लाने लगा। जैसे चिल्लाया बच्चे की आवाज माँ का हृदय तोड़ देता है। माँ दौड़ते हुए आ गई, अपने हाथ में क्या लेकर आ गई, पेड़ा ही, पेड़ा जानते हो क्या, स्वीट, हाँ, मथुरा के पेड़े, हाँ, फेमस है। तो पेड़ा लेके आए, दौड़ते हुए बच्चे, क्या हो गया बालक, उसको खिलाया, बच्चा बड़ा शांत हो गया। और फिर बच्चे ने सोचा, अरे ये तो बढ़िया अच्छी चीज है, क्या है अच्छी चीज, क्या है रो, क्या मिलता है, नहीं मिर्ची, मिर्च खाओ तो क्या मिलता है, पेड़ा। तो वैसे अभी दूसरे दिन बच्चे ने मिर्च उठाई, फिर से खाई और चुकाने लगा, माँ उस दिन नहीं आ रही है। फिर बच्चे चिल्लाते जा रहा है, रो पड़ा, ये खुद गया माँ के पास, क्यों नहीं आए, आज तो मैं मिर्ची खा लिया था। कहते कल तो मुझे पुकार रहे थे, आज पेड़े को पुकार रहे हो, इसलिए मैंने आए, मुझे पुकारते तुम्हें आ जाता। वैसा ही हमारा भक्ति में आक्रोश है, हाँ, नाम सेवा साधना इन सब चीजों में कभी कभी हम सिंसियरली पुकारते भगवान को और अनुभव करते कि हाँ कुछ हो रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है। लेकिन कभी कभी हम कृष्ण को नहीं पुकारते, कृष्ण की किसको पुकारते, शक्ति को, हाँ, जिसके कारण हम फिर फंस जाते हैं। तो ऐसे ही ये उत्सव है स्नान यात्रा, जिसको स्मरण करना चाहिए। और ये स्नान यात्रा उत्सव हमें ये दिखाता है पावर ऑफ लव या पावर ऑफ डिवोशन, भक्ति का जो शक्ति है या प्रेम की जो भावना है ब्रजवासियों की, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसको वास्तव में स्नान यात्रा ये करता है, स्थापित करता है और हमें प्रेरित करता है कि कृष्णा तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होना संभव है, अनन्य भावना से। जिस प्रकार से भगवान वृंदावन वासियों के प्रति आसक्त हो गए थे या वृंदावन वासियों के जो शुद्ध भजन से कृष्ण आकृष्ट हो गए थे, उसी प्रकार से यदि हम वास्तव में कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अनन्य भजन को स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई गति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अनन्य भावना से बिना किसी हेतु के भगवान की सेवा करने का प्रयास करना होगा, जिसके द्वारा हम शुद्ध होंगे और भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर पाएंगे, जैसे इन महान भक्तों ने किया था। जैसे एक डिवोटी है जिनका नाम क्या है, श्रीधर पंडित, एक महान भक्त वह है चैतन्य महाप्रभु के समय में। ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, भौतिक रूप से कोई उनके पास ऐसी खास योग्यता नहीं थी, भगवान को एक चीज स्वीकार्य नहीं है, इसलिए शास्त्र कहते हैं दिनेरा अधिक दया करे भगवान कुलीन पंडित शरीर बड़ा अभिमान। जो दीनहीन भावना से भगवान का सेवा करता है भगवान उस पर दया करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना पांडित्य का, कुल का, धन का, सौंदर्य आदि का अभिमान होता है, भगवान उससे दूर रहते हैं। तो ऐसे भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर पंडित,
इनकी खासियत क्या थी, बहुत गरीब थे। हाँ, ये ऐसा वर्णन आता है कि एक झोपड़ी में वो रहते थे घास के, और उनके पास अपना कहने के लिए कुछ सामान नहीं था। घर में एक लोहे का पात्र हुआ करता था और एक ही धोती थी जिसमें 17 छेद थे, और निरंतर नाम संकीर्तन हम करते रहते थे। ऐसे ये जो ब्राह्मण नवद्वीप में निवास करते थे, जिनका नाम था कोलावेचा श्रीधर, कोलावेचा में जो केले के पत्ते और केले से बने हुए सामान हैं, हम वो सब बेचते थे। और चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में उनके पास जाते थे और कहते थे, हे कोलावेचा श्रीधर, हाँ मुझे आप ये महाप्रभु तो फ्री का माल लेने के चक्कर में रहते थे, फ्री में मिल जाए सब कुछ। लेकिन कोलावेचा कहता है, मैं जिस मूल्य में खरीद के लाया हूँ उसी मूल्य में दे रहा हूँ। दुकान वाला बोलता है, आपसे कुछ ज्यादा नहीं दूंगा, आप तो रेगुलर ग्राहक है, आप हमारे हैं। तो कहते हैं, भाई आपको तो बिल्कुल कम प्राइस में दे रहा हूँ। हिमा कहते, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि कोलावेचा श्रीधर युधिष्ठिर के समान सत्यव्रत थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो लेकिन ये निमाई इतना तंग करता था उनको जाकर महाप्रभु, वो कहते थे, मेरे बाप आप फ्री ले जाओ, यहाँ से उठा के ले जाओ सारा। महाप्रभु जो बिना पैसे देकर उठा के ले आते थे जो भी चाहिए उनको। हाँ, वो कहते हैं, इतना उनका सेवा भावना था कि जो भी उससे आमदनी होते थे, जो भी आता था लक्ष्मी, उससे आधा धन गंगा की पूजा में से खर्च करते थे और आधा धन अपने लिए रखते थे, ना के बराबर था। हाँ, लेकिन निरंतर कृष्ण कीर्तन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन शिवास पंडित के घर में अपना मूल स्वभाव प्रकट किया था, महाप्रकाश लीला जिसे कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के आवेश में आकर अलग अलग भक्तों को बुलाते थे और कहते थे, मांगो, आप मुझसे मांगो। तो महाप्रभु ने कहा, श्रीधर को बुलाओ। अभी भक्तों ने भक्त का नाम नहीं सुना था, बड़े बड़े भक्तों का नाम सबको पता रहता है जो सेवा करते, बहुत सारे छोटे छोटे भक्तों का नाम किसी को याद नहीं रहता। इसलिए हमें ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे बड़ा भक्त बनना है या छोटा भक्त बनना है, मुझे केवल सिंसियर सरल हम्बल कृष्ण का सेवक बनना है। छोटे बड़े के चक्कर में मुझे नहीं रहना है, उसके चक्कर में रह गया तो शुद्ध भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो ऐसे कोलावेचा श्रीधर को जब महाप्रभु ने बुलाया, तो किसी भक्त ने पूछा, ये श्रीधर कहाँ मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु कहते, नवदीप से यण में जो एक झोपड़ी होगी और जहां दूर दूर से आवाज सुनाई देगी, कौन सी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरि नाम की आवाज सुनाई देगी ना, जो चिल्ला रहा होगा वही श्रीधर होगा। हाँ, तो ऐसे भक्त गए तोड़ते हुए, देखा कि एक झोपड़ी में से आवाज निकल रही है। हाँ, तो कुछ जो पड़ोसी लोग थे ना, जब ये क्या करते थे, रात भर नाम लिया करते थे, चारे प्रहर रात्रि निद्रा नाहे कृष्ण नामे सर्वरात्रि हरि बले दीर्घ लगावाने, रात भर सोते नहीं थे, लाउडली हरि नाम लेते थे। तो जो पड़ोसी और दुष्ट लोग थे वो कहते थे, ये जो व्यक्ति है जोर जोर से चिल्ला रहा है, हमारे कान फटे जा रहे हैं, कहते ये गवार बेटा इसका पेट भात खाकर नहीं भर रहा है, जिसके कारण इसको इतनी भूख लग रही है कि वो चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? हरि नाम चिल्ला रहा है। तो ऐसे लोग कहते थे, इसको खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूखा प्यासा है, इसलिए वो हरि नाम ले रहा है। तो जब ये भक्त है तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो श्रीधर है, हरि नाम ले रहा है। ये गए, कहते आपको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। तो श्रीधर ने जैसे सुना चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया, मूर्छित हो गए, फिर उनको उठाया, उठा के ले गए महाप्रभु चैतन्य के पास। अरे चैतन्य महाप्रभु के पास उनको ले गए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे श्रीधर, तुम तो मेरे जन्म जन्मों के दास हो, आप क्या करो, मेरी बहुत आराधना करो, तुमने इतनी अधिक आराधना की है, तो अभी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांगो। तो ये चुप थे। महाप्रभु कहते सारे अस्त्र सिद्धि दे दो तुम्हें, राजा बना दो राजा। वो कहते नहीं, चुप थे। इन्होंने कहा महाप्रभु कहते अरे मांगो ना कुछ। अभी श्रीधर तो हम श्रीधर की जगह होते तो महाप्रभु को पता चलता कि कितना मांगा जाता है। तो श्रीधर ने दो चीजें मांगी, यहाँ बहुत अमेजिंग है दो चीजें। एक चीज क्या थी, श्रीधर कहते हैं श्रीधर बलय प्रभु देह वर जेब्रा मन कड़ी नीला मोर खोला पाता। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण बालक निमाई मेरे घर केला केला और केले का सामान लेने आता था, वही मेरे जन्मों जन्मों क्या बन जाए, स्वामी या नाथ बन जाए, वो मेरे मास्टर बन जाए, मेरे प्रभु बन जाए जन्मों जन्मों तक। और दूसरी चीज श्रीधर बोले हमें किछु इना चाहे हे न कर प्रभु जन तोर नाम गाय। हम वो कहते हैं कि हे चैतन्य देव किछु इना चाहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, बस आप इतना ही करो कि मैं अपने मुख से क्या करूं, आपका ये जो नाम है कृष्ण नाम को सदैव क्या करूं, गाते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कृष्ण लीला में ये कुसुमासव सखा है जो भगवान कृष्ण को हंसाते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे श्रीधर ऐसे भक्त थे कि भौतिक रूप से उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान को उन्होंने खरीद लिया था, वश में किया था। और यही डिवोटी है जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप मायापुर को छोड़ा, जो आखिरी रात थी महाप्रभु की, सबसे आखिरी कुछ खाया था, तो वो किसके द्वारा दिया हुआ खाया था उन्होंने, श्रीधर पंडित के द्वारा। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसी अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन छोड़ने वाले थे नवद्वीप संन्यास लेने के लिए, तो उस दिन सारे लोग आकर भक्त आकर मिल रहे थे। अब बहुत रात हो गई तब ये श्रीधर आ गए उनको मिलने। श्रीधर ने सोचा चैतन्य महाप्रभु को मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वो गरीब थे क्या लेके जाएंगे। उन्होंने देखा घास की जो कुटिया है उसके ऊपर कद्दू एक आ गया है, कद्दू का होता है ना बेटी क्या कहते हैं लौकी या जो भी है कद्दू, हाँ पंकी, तो वो लेकर सोचा घर के ऊपर है चलो उसको तोड़ा और गए महाप्रभु के पास। कहते हैं ये मेरे भेंट आपके लिए है। चैतन्य महाप्रभु आनंदित हो गए, उसको लिया। महाप्रभु ने अपनी माता सची माता को कहा तुरंत दूध में इसका वो बनाओ, खीर बना दो। और महाप्रभु उसका खीर लिए और विश्राम किया और दूसरे दिन महाप्रभु चले गए। तो इतना प्रेम श्रीधर से रखते थे। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब नवदीप मायापुर को छोड़ा तो हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में जाते थे श्रीधर पंडित, किसको मिलने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो ऐसे ऐसे महान भक्त हैं जो जिनका अनुराग भगवान की सेवा और उनके नाम से था, जिसके द्वारा उन्होंने भगवान को वश में किया था। और एक आचार्य हैं जिनका नाम है मुकुंद दत्त। दो भाई थे, एक थे वासुदेव दत्त और दूसरे थे मुकुंद दत्त। तो ये जो मुकुंद दत्त हैं ये चैतन्य ऐसे सात मुकुंद हैं। कितने मुकुंद हैं, वो गौरार्थ में एक मुकुंद आते हैं संजय मुकुंद। हाँ, एक थे जिनका नाम था मुकुंद संजय, संजय उनका टाइटल था या उपाधि थी। तो ऐसे छह सात मुकुंद हैं, तो उसमें एक मुकुंद है जिनका नाम है मुकुंद दत्त। चैतन्य महाप्रभु और ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सहपाठी जिसे कहते हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु निमाई का बचपन का नाम था, उनको इतना अभिमान अपने विद्या नॉलेज आदि का कि जो भी मिले उसको क्वेश्चन पूछ के हरा देते थे। तो ऐसे एक दिन मुकुंद सामने आए और मुकुंद ने देखा ही निमाई आ रहा है वहां से, मुकुंद डर के भाग चले गए रास्ता बदल के कि ये आके कुछ पूछ लेगा मुझे। एक दिन छुपके से जाके हाथ पकड़ा और प्रश्न पूछने लगे, इतने प्रश्न पूछे कि मुकुंद हर गया। मुकुंद ने निमाई के चरणों का धूलि उठाया चैतन्य महाप्रभु के अपने सर में लगाया और जाते जाते सोचने लगा ये तो कृष्ण का भक्त नहीं है निमाई, ये यदि भक्त बन जाएगा ना तो मैं मेरे पूरा जीवन इसी के साथ रहूंगा, किसी और सबके साथ नहीं रहूंगा। आगे चलकर महाप्रभु गया से वापस आते हैं और महान कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो यही मुकुंद है जो चैतन्य महाप्रभु को सबसे अधिक आनंद देते थे। महाप्रभु को जब नाचना होता था तो महाप्रभु कहते थे, मुकुंद तुम गाओ, मैं क्या करूंगा, नाचूंगा। इतना महाप्रभु का प्रेम था। लेकिन एक चीज महाप्रभु की इनको खटकते थे, और वो क्या थे, महाप्रभु किसी को छोड़ते नहीं थे शिक्षा देने के लिए, दंडित करने के लिए, चाहे वो अपनी माँ हो या कोई अद्वैत आचार्य हो, सबको भक्ति का सिद्धांत स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने छोटे से छोटे भक्त को से लेकर बड़े से बड़े भक्तों को दंडित किया है। तो ये जो मुकुंद का स्वभाव क्या था, एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जो महाप्रकाश लीला किया और सबको बुलाया कि मैं सबको वर देना चाहता हूँ, तो श्रीधर सबका नाम लिया और महाप्रभु जब बैठे थे वह पर्दा था और पर्दे के पीछे मुकुंद खड़ा हुआ था, सबका नाम लिया और एक भक्त का नाम नहीं लिया। जैसे आपने गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, सबको पुरस्कार मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, और आपने गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आपका नाम अनाउंस नहीं हो रहा है, तो दुख होता है ना अंदर से। बाहरी रूप से तो दिखाते कि मैं बड़ा विनम्र भक्त हूँ, लेकिन वैसे बड़ा दुख होता है। तो वैसे ही मुकुंद बाहर था और रो रहा था और महाप्रभु अंदर थे, तो देखा एक भक्त नहीं गया है। तो श्रीवास पंडित ने कहा, ये तो मुकुंद, मुकुंद को क्यों नहीं बुलाया आपने। चैतन्य महाप्रभु कहते, वो मुकुंद जो गंगा जाता है तो गंगा राम बन जाता है, यमुना जाता है तो यमुना दास होता है, मतलब जिस पार्टी में जाए उस पार्टी का होता है ना व्यक्ति। कहते हैं ये उस निर्विशेष मायावादियों के साथ जाते हैं तो उनके जैसा रह जाता है, उनके जैसा करेगा, भक्तों के साथ आता है तो भक्तों की तरह, हाँ जैसा वेश, क्या कहते, जैसा देश वैसा वेश। कहते ये उचित व्यक्ति नहीं है, हाँ ये तो वैसा है कि कभी कभी आपने मुंह में तिनका लेकर बड़ा विनम्रता दिखाता है और कभी कभी हाथ में लाठी लेके आकर सर में मारता है, ऐसा ही मुकुंद है, हाँ ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये जब सुना कि भारी खड़ा कर पर्दे के पीछे, मुकुंद बहुत रोने लगे। महाप्रभु ने कहा, इसको मैं अपना दर्शन नहीं दूंगा, उसको मैं बुलाऊंगा। अब इतने भक्तों के बीच और ये बहुत निराश दुखी हो गए। फिर शिवास पंडित आए और देखा कि अरे शिवास पंडित बहुत, हाँ भगवान दंडित करे किसी को तो, लेकिन भक्तों का हृदय बड़ा सॉफ्ट होता है, हाँ वो उनको सेवा में लगा के रखते हैं। तो इस प्रकार से शिवास पंडित आए और शिवास पंडित कहते हैं कि मुकुंद, हाँ भगवान ऐसे कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये मुकुंद एक ही बात पूछता है कि आप जाकर चैतन्य महाप्रभु को कहो कि आप मुझे कब दर्शन दोगे। तो ये गए श्रीवास पंडित अंदर और चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि ये मुकुंद पूछ रहा है कि आप उन्हें कब दर्शन दोगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मैं इस मुकुंद को दर्शन दूंगा। अभी ये जब मुकुंद ने सुना, मुकुंद जोर जोर से नाचने लगा, हंसने लगा, गाने लगा कि मेरा तो, मैं भाग्यवान हूं कि फाइनली चैतन्य महाप्रभु मुझे कब दर्शन देंगे, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद। तो देख, ये महाप्रभु ने जब सुना, नाच रहा है, खुश है, इतना मेरे दर्शन के लिए लालायित है और निश्चय है उसका, धैर्य है। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल में, कैसा भक्त है, एक जन एक घंटा हम मिनट में करते किसी की सेवा के लिए, किसी भक्त के इंतजार के लिए भी, और यहाँ भगवान के करोड़ करोड़ जन, हाँ अभी एक जन कितना कठिन लग रहा है हमें जो गुजर रहा है। तो महाप्रभु इतने आनंदित हो गए, महाप्रभु ने कहा, इसने तो मुझे जीत लिया है, वो करोड़ जन्मों में नहीं, मैं अभी इसको दर्शन दूंगा। शिवा जाओ, उसका हाथ पकड़ के लेके आओ मेरे सामने। और लेके आते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रखते हैं, हाँ मुकुंद दत्त को, जो निरंतर महाप्रभु के लिए गाया करते थे, केवल कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार से ये जो धैर्य, हाँ की जो भावना है मुकुंद दत्त के हृदय में थी। तो ऐसे महान आचार्य हैं
जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने वश में किया था या उनकी अनुकंपा प्राप्त की थी। हाँ, कैसे? केवल एकांत भजन और अनन्य भावना से। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वैष्णव का हमें स्मरण करना चाहिए, उनके चरित्र के बारे में सोचना चाहिए, अलग अलग गुण और शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए, जिसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं और भगवान जगन्नाथ के प्रति अनुराग और प्रेम की भावना विकसित कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव के श्रीधर पंडित तिरुवागदी महामहोत्सव के श्रील मुकुंद दत्त तिरुवागदी महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।